एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर न गलतफहमियों से, डर से और ढेर सारे सवालों से घिरा होता है।
हाँ।
यानी दवाएं, या जिन्हें हम आम बोलचाल में ड्रग्स भी कह देते हैं।
बिल्कुल। और देखिए, ये विषय संवेदनशील तो है पर बहुत जरूरी भी है।
हाँ।
और इसे समझने के लिए आज हम विज्ञान का सहारा लेंगे।
हाँ, खास तौर पर हम बात करेंगे मशहूर ब्रिटिश न्यूरोफार्माकोलॉजिस्ट लेस्ली आइवर्सन की, उनकी दो अहम किताबों की, ड्रग्स और ड्रग्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
तो आज ही क्यों बात कर रहे हैं इस पर?
देखिए, बात यह है कि दवाएं हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, है ना?
बिल्कुल हैं।
चाहे वो डॉक्टर की लिखी कोई दवा हो, या सुबह की कॉफी में जो कैफीन है, या फिर शराब हो, या फिर वो पदार्थ जिन पर कानूनी पाबंदी है। ये सब कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य, हमारे समाज, हमारे जीवन को छूते तो हैं ही।
और यहीं पर लेस्ली आइवर्सन का नज़रिया बहुत अहम हो जाता है। वो हमें एक तरह से उकसाते हैं कि हम डर या सिर्फ नैतिकता की बहस से थोड़ा परे हटें
सही।
और इन पदार्थों को वैज्ञानिक सबूतों की रोशनी में देखें।
उनका मकसद डराना या किसी चीज़ का प्रचार करना बिल्कुल नहीं था।
नहीं, बल्कि हमें जानकारी देना था ताकि हम अपनी एक समझ बना सकें।
तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि आइवर्सन के वैज्ञानिक नज़रिए से दवाओं के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझा जाए।
हाँ।
ताकि इन जटिल मुद्दों पर हम सब एक ज़्यादा सूचित और तर्कसंगत सोच रख पाएं।
बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल।
तो सबसे पहले, ये लेस्ली आइवर्सन थे कौन जिनकी किताबों पर हम बात कर रहे हैं? ये कोई आम लेखक तो नहीं थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वे दुनिया के जाने माने ब्रिटिश फार्माकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट थे। बहुत बड़ा नाम थे अपने क्षेत्र में।
जी हाँ, उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में सालों तक पढ़ाया भी और रिसर्च भी की।
जी।
उनका काम मुख्य रूप से इसी बात पर था कि ये दवाएं हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर आखिर काम कैसे करती हैं।
और एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो सिर्फ लैब या यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं थे।
अच्छा।
हाँ, उनका अनुभव विज्ञान और सरकारी नीति निर्माण दोनों क्षेत्रों में काफी गहरा था। वे ब्रिटेन सरकार की एक बहुत अहम सलाहकार समिति थी, एडवाइजरी काउंसिल ऑन द मिसयूज ऑफ ड्रग्स या ACMD, उसके अध्यक्ष भी रहे।
अरे वाह, वो जानते थे कि लैब की जो रिसर्च है वो जमीनी हकीकत और कानूनों से कैसे जुड़ती है।
बिल्कुल, उन्हें दोनों पक्षों की समझ थी।
उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र क्या था? किस पर ज्यादा काम था उनका?
उनका खास काम था न्यूरोट्रांसमिटर्स। आप जानते हैं, दिमाग के केमिकल मैसेंजर।
हाँ हाँ।
खासकर डोपामाइन और पार्किंसंस या सिज़ोफ्रेनिया जैसे दिमागी रोगों पर उनका गहरा शोध था। और हाँ, वे भांग यानी कैनबिस के विज्ञान के भी बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे।
अच्छा।
लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी खूबी, जो उनकी किताबों में भी साफ झलकती है, वो ये थी कि वे बहुत मुश्किल वैज्ञानिक बातों को भी एकदम साफ और सरल भाषा में समझा सकते थे।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और उनका नजरिया पूरी तरह से वैज्ञानिक, किसी नैतिक पक्षपात या राजनीतिक झुकाव से एकदम परे।
उनका मूल सवाल बस यही होता था कि ये केमिकल आखिर है क्या?
हाँ।
और ये शरीर पर करता क्या है?
बस यही वैज्ञानिक निष्पक्षता और सरलता उन्हें इस विषय पर एक बहुत भरोसेमंद आवाज बनाती है।
चलिए, अब आइवर्सन की किताबों पर आते हैं, ड्रग्स और वो ड्रग्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो ये किताबें आखिर हैं किस बारे में? आसान शब्दों में क्या कहेंगे?
आसान शब्दों में ये इस बात का वैज्ञानिक परिचय है कि दवाएं हमारे शरीर में काम कैसे करती हैं।
ठीक है।
और आइवर्सन का एक केंद्रीय तर्क है जो शुरू से ही सोचने पर मजबूर करता है।
जी।
वो कहते हैं कि सभी दवाएं, चाहे उनका कानूनी दर्जा कुछ भी हो, डॉक्टर की दी हुई एंटीबायोटिक हो, सुबह की चाय या कॉफी, शाम की शराब या कोई गैर कानूनी पदार्थ,
हाँ,
मूल रूप से है तो सिर्फ रसायन ही, केमिकल्स
है तो केमिकल्स ही।
हाँ। और ये रसायन हमारे शरीर की अपनी जो अंदरूनी जैविक व्यवस्था है उसके साथ क्रिया करते हैं।
और यही वो एक आम धारणा को चुनौती देते हैं, है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि दवाएं यानी मेडिसिन्स और ड्रग्स यानी ड्रग्स ऑफ अब्यूज, ये दो बिल्कुल अलग अलग श्रेणियां हैं।
हाँ, एक अच्छी दूसरी बुरी, ऐसे ही सोचते हैं ना हम।
हाँ, बिल्कुल।
लेकिन आइवर्सन दिखाते हैं कि ये बंटवारा अक्सर वैज्ञानिक कम
और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या कानूनी ज्यादा होता है।
सही कहा।
किताब हमें एक तरह के सफर पे ले जाती है। शुरुआत होती है इस सवाल से कि भाई ड्रग आखिर है क्या? फिर समझाया जाता है कि ये हमारे शरीर और दिमाग पर असर कैसे डालते हैं और मानव इतिहास में इनकी भूमिका क्या रही है। ये कोई आज की चीजें तो है नहीं।
नहीं, सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं और इसमें लगभग हर तरह के पदार्थों का जिक्र है। शराब, कैफीन, निकोटीन जैसी कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकृत चीजों से लेकर कैनबिस, कोकीन, हेरोइन, LSD जैसी गैर कानूनी या विवादास्पद दवाओं तक, आइवसिन इन सभी को एक ही वैज्ञानिक तराजू पर तौलते हैं।
मतलब ये देखने के लिए कि वे काम कैसे करते हैं।
बिल्कुल, उनका लक्ष्य किसी नतीजे पर पहुंचाना या किसी नीति का समर्थन करना नहीं है।
नहीं,
बल्कि हमें वैज्ञानिक जानकारी देना है ताकि हम दवाओं और उनसे जुड़ी नीतियों के बारे में अपनी समझदार तर्कसंगत राय बना सकें। किताब नशे की लत यानी एडिक्शन के पीछे जो दिमाग का विज्ञान है उसे भी बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है।
तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, कुछ मुख्य वैज्ञानिक बातों को समझते हैं जो आइवर्सन समझाते हैं।
जरूर।
सबसे पहले, ये दवाएं शरीर में काम कैसे करती हैं? क्या है इसका मूल सिद्धांत?
देखिए, मूल सिद्धांत ये है कि दवाएं हमारे शरीर के अंदर जो रसायन या सिस्टम पहले से मौजूद हैं उन्हीं के साथ छेड़छाड़ करती हैं। एक तरह से कहें तो उन्हें हैक करती हैं।
अच्छा, कैसे?
हाँ, इसे ऐसे समझें कि हमारे शरीर और खासकर दिमाग में कोशिकाओं पर खास तरह के ताले लगे होते हैं। इन्हें वैज्ञानिक भाषा में रिसेप्टर्स कहते हैं।
ताले यानी रिसेप्टर्स, ठीक है।
हाँ, और शरीर के अपने रसायन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स इन तालों के लिए बनी चाबियां हैं। अब दवाएं क्या करती हैं? या तो इन चाबियों की नकल करती हैं, या तालों में फंसकर असली चाबी को काम करने से रोकती हैं, या फिर इन चाबियों की मात्रा को घटाती बढ़ाती हैं।
ओके, और यही पर वो बात आती है जो आइवर्सन बार बार कहते हैं, मात्रा का महत्व, डोज रिस्पॉन्स कर्व।
बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आसान भाषा में दवा की मात्रा तय करती है कि उसका असर कैसा और कितना होगा। बहुत कम मात्रा में शायद कोई असर ही न हो, मात्रा बढ़ाने पर असर बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद या तो असर बढ़ना बंद हो जाता है या फिर जहरीले प्रभाव दिखने लगते हैं।
बिल्कुल, वो पुरानी कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जेत, या जैसा पैरासेल्सिस ने कहा था, खुराक ही जहर बनाती है।
सही, पानी भी जरूरत से ज्यादा पी लें तो खतरनाक हो सकता है।
हाँ, ये तो है।
और ये सिद्धांत हर दवा पर लागू होता है, चाहे वो एस्पिरिन हो या हेरोइन।
तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कुछ खास तरह की दवाओं के उदाहरण देखें, जैसे उत्तेजक, स्टिमुलेंट्स, जो हमें जगाते हैं।
हाँ बिल्कुल, सबसे आम उदाहरण कैफीन।
अपनी रोज की कॉफी या चाय।
वही, आइवर्सन बताते हैं कि कैफीन दिमाग में नींद लाने वाले एक रसायन होता है, एडेनोसिन, उसके रास्ते में रुकावट डालती है।
अच्छा, इसलिए नींद भाग जाती है।
हाँ, इसलिए कॉफी पीकर नींद भाग जाती है। लेकिन अगर कैफीन एक हल्की सी थपकी है ना, तो कोकेन या एम्फेटामिन जैसे उत्तेजक दिमाग के इनाम वाले सिस्टम पर जोर का हथौड़ा मारते हैं।
जोर का हथौड़ा।
हाँ, ये डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की बाढ़ ला देते हैं। डोपामाइन हमें खुशी और प्रेरणा महसूस कराता है, लेकिन इसकी ये जबरदस्त बाढ़ ही असल में नशे की लत का कारण बनती है।
दिमाग को लगता है कि ये अनुभव जिंदा रहने के लिए जरूरी है।
बिल्कुल, उसे सिग्नल मिलता है कि ये बहुत जरूरी चीज है।
अच्छा,
इसके ठीक उलट है अवसादक या डिप्रेसेंस, जो दिमाग की रफ्तार धीमी करते हैं।
हाँ।
जैसे शराब, शराब दिमाग का जो मुख्य ब्रेक वाला सिस्टम है, गाबा सिस्टम, उसे और ज्यादा सक्रिय कर देती है।
तो उससे शांति महसूस होती है, चिंता कम होती है।
हाँ, लेकिन ज्यादा मात्रा में सोचने समझने की शक्ति, शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है, और बहुत ज्यादा हो तो बेहोशी भी आ सकती है।
फिर आते हैं ओपियोइड्स, जैसे मॉर्फीन, हेरोइन या डॉक्टर की लिखी हुई दर्द की दवाएं।
हाँ, ये कमाल की दवाएं हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का जो अपना दर्द निवारक सिस्टम है, एंडोर्फिन सिस्टम, उसी की नकल करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली तरीके से।
अच्छा,
ये दर्द तो मिटाती ही हैं, साथ में तीव्र आनंद मतलब यूफोरिया भी देती हैं।
और यही वजह है कि ये दवाएं चिकित्सा में बहुत उपयोगी हैं, खासकर गंभीर दर्द में।
बिल्कुल, लेकिन इसी शक्तिशाली असर के कारण इनकी लत लगने और ओवरडोज का खतरा भी बहुत बहुत ज्यादा होता है। ओवरडोज जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये सांस लेने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देते हैं।
ओ, और कैनबिस यानी भांग, इस पर आइवर्सन क्या कहते हैं? इस पर तो वो विशेषज्ञ थे।
हाँ, इस पर वो खास ध्यान देते हैं। इसमें पाया जाने वाला मुख्य रसायन है THC। ये हमारे दिमाग के अपने एंडोकैम्बिनॉइड सिस्टम से जुड़ता है।
एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, ये शरीर खुद बनाता है।
जी हाँ, और मजे की बात यह है कि इस सिस्टम का पता ही तब चला जब वैज्ञानिक THC का अध्ययन कर रहे थे।
अरे वाह,
हाँ?
ये सिस्टम मूड, याददाश्त, भूख, दर्द जैसी कई चीजों को नियंत्रित करता है।
THC इस सिस्टम को उत्तेजित करता है जिससे वो जाने पहचाने प्रभाव पैदा होते हैं।
और LSD जैसे हेलोसिनोजन या साइकेडेलिक्स भी हैं?
हाँ, वो भी है जो सोच और हमारे इंद्रियों के अनुभव को बदल देते हैं, मुख्य रूप से सेरोटोनिन सिस्टम पर असर डालकर।
आइवरसन इन सब के पीछे के विज्ञान को बिना किसी सनसनी के बिल्कुल तटस्थ होकर समझाते हैं।
और इन सब चर्चाओं से जुड़ा एक बहुत ही अहम पहलू है नशे की लत का विज्ञान, एडिक्शन। हाँ, और आइवरसन इस पर बहुत जोर देते हैं कि लत कोई नैतिक कमजोरी या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है।
ये सुनना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, ये दिमाग की एक बीमारी है जिसमें दिमाग की वायरिंग ही बदल जाती है।
वायरिंग बदल जाती है कैसे?
जैसे हमने पहले डोपामाइन के बारे में बात की थी ना।
हाँ।
लगभग सभी नशे वाली दवाएं दिमाग के इनाम वाले रास्ते, रिवॉर्ड पाथवे में डोपामाइन का स्तर तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। दिमाग इसे सीख लेता है कि ये दवा बहुत जरूरी है।
बार बार इस्तेमाल से दिमाग तवाका आदि हो जाता है, जिसे टॉलरेंस कहते हैं, मतलब असर के लिए और ज्यादा दवा चाहिए।
और दवा ना मिलने पर तकलीफ होती है, विदड्रॉवल।
बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि लंबे समय तक नशे के सेवन से दिमाग का वो हिस्सा भी प्रभावित होता है जो सोचने, समझने, फैसले लेने और खुद पर काबू रखने के लिए जिम्मेदार है।
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।
हाँ, वही। इसीलिए जानते बूझते हुए भी कि नशा नुकसान कर रहा है, व्यक्ति के लिए उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिमाग की चाहत, वॉन्टिंग, उसकी पसंद पर हावी हो जाती है।
तो आइवरसन की इन किताबों से कुछ बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले संदेश क्या निकलते हैं?
पहला तो वही जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी कि दवा, मेडिसिन और नशे, ड्रग ऑफ अब्यूज के बीच की रेखा वैज्ञानिक तौर पर बहुत धुंधली है।
हाँ,
ये बंटवारा अक्सर समाज और कानून बनाते हैं, विज्ञान ने। हाँ, मॉर्फिन का उदाहरण एकदम सही है, अस्पताल में जीवन रक्षक, बाहर खतरनाक। दूसरा बड़ा संदेश है खुराक और संदर्भ का महत्व।
बिल्कुल, कोई भी चीज सही मात्रा और सही संदर्भ में दवा हो सकती है और गलत मात्रा या गलत संदर्भ में जहर। दवा का असर सिर्फ दवा पर ही नहीं बल्कि उसे लेने वाले व्यक्ति और माहौल पर भी निर्भर करता है। जैसे भारत में ही होली पर भांग का सेवन कुछ जगहों पर सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत है।
हाँ है,
पर वही चीज दूसरे माहौल में गलत मानी जाती है।
तीसरा, आइवरसन वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यह तर्क देते हैं कि कई मामलों में दवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने, मतलब प्रोहिबिशन की जो नीतियां हैं, वो नाकाम रही हैं। उनसे ना सिर्फ इस्तेमाल कम नहीं हुआ बल्कि अक्सर एक खतरनाक काला बाजार पैदा हुआ
जहां मिलावटी और ज्यादा खतरनाक दवाएं बिकती हैं।
सही।
और इन दवाओं के जो संभावित चिकित्सीय फायदे हो सकते थे उन पर रिसर्च में भी रुकावट आई।
चौथा, और ये बहुत जरूरी है कि नशे की लत को एक दिमागी बीमारी के तौर पर समझा जाए।
हाँ, ये जानने से कि दवाएं कैसे दिमाग के सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं, हमें लत से जूझ रहे लोगों के प्रति ज्यादा हमदर्दी रखने और कलंक को कम करने में मदद मिलती है।
ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं, दिमाग में आया बदलाव है।
बिल्कुल। और पांचवा, एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल जो आइवरसन उठाते हैं कि हमारे मौजूदा दवा कानून क्या वाकई वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है
या वे इतिहास, डर, नस्लीय पूर्वाग्रहों या राजनीतिक विचारों से ज्यादा प्रभावित हैं।
हाँ, वो इशारा करते हैं कि शराब और तंबाकू, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और समाज पर भारी बोझ डालते हैं, वो कानूनी है,
जबकि वैज्ञानिक रूप से शायद उनसे कम हानिकारक मानी जाने वाली कई दवाएं गैर कानूनी हैं।
ये सोचने वाली बात है ना।
वाकई, आइवरसन की किताबों में कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे उनका ये कहना
कि
दवा और औषधि का भेद विज्ञान नहीं बल्कि संस्कृति और कानून तय करते हैं। ये हमें चीजों को सिर्फ अच्छे या बुरे के खांचे में देखने से रोकता है। दुनिया उतनी सीधी नहीं है। हाँ, या फिर वो खुराक वाली बात, हर दवा जहर है, सिर्फ खुराक तय करती है कि वो जहर है या इलाज।
ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी पदार्थ के बारे में राय बनाने से पहले उसकी मात्रा और संदर्भ को समझना कितना जरूरी है।
एक और विचार जो थोड़ा चौंकाता है लेकिन सोचने पर मजबूर करता है, शायद दवाओं के अपराधीकरण ने समाज को दवाओं से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।
ये हमें मौजूदा नीतियों पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है कि क्या वे वाकई समस्या का हल है या खुद ही एक समस्या बन गई है।
और ये बात कि दवाएं दिमाग में कैसे काम करती हैं, ये समझना न सिर्फ बेहतर इलाज विकसित करने के लिए बल्कि तर्कसंगत और असरदार नीतियां बनाने के लिए भी जरूरी है।
यानी नीतियां विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, डर या पूर्वाग्रह पर नहीं।
और अंत में शायद सबसे मानवीय संदेश,
लत को चरित्र की कमी नहीं बल्कि दिमाग के सीखने और प्रेरणा सर्किट की बीमारी समझना चाहिए। ये नजरिया हमें ज्यादा हमदर्द और मददगार बनाता है।
तो अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इसका क्या करें?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम दवाओं के बारे में ज्यादा सोच समझ कर फैसले ले सकते हैं।
हाँ,
चाहे वो डॉक्टर की लिखी दवा हो या सरदर्द की गोली हो या सुबह की कॉफी ही क्यों ना हो।
हम समझ सकते हैं कि इसकी कितनी मात्रा सही है, इसके क्या असर हो सकते हैं, क्या जोखिम है।
बिल्कुल, हम ये भी समझ सकते हैं कि एक ही दवा अलग अलग लोगों पर थोड़ा अलग असर क्यों कर सकती है।
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग जैसे डॉक्टर, नर्स, काउंसलर,
हाँ, वे विभिन्न दवाओं और नशे की लत को बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके वैज्ञानिक आधार पर समझ सकते हैं। इससे वे मरीजों और उनके परिवारों की बेहतर मदद कर सकते हैं।
और जब समाज में दवाओं से जुड़ी नीतियों पर बहस होती है कि किसी दवा को कानूनी बनाना चाहिए या नहीं, नशे की लत से कैसे निपटा जाए,
हाँ, तो हम सुनी सुनाई बातों या डर के बजाय सबूतों और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख सकते हैं। हम सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हमारे कानून वाकई वैज्ञानिक समझ पर आधारित है।
और शायद सबसे बड़ा बदलाव हमारे नजरिए में आ सकता है, खासकर नशे की लत को लेकर।
बिल्कुल, अगर हम इसे इच्छा शक्ति की कमी के बजाय दिमाग की बीमारी की तरह देखें तो हम इससे जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं।
उन्हें सजा देने या दुत्कारने के बजाय हम मदद के सही रास्ते ढूंढने पर ध्यान दे सकते हैं।
माता पिता भी इस जानकारी का इस्तेमाल अपने बच्चों से दवाओं के बारे में ज्यादा खुलकर और ईमानदारी से बात करने के लिए कर सकते हैं, सिर्फ ना कहना सीखो से आगे बढ़कर।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
वे समझा सकते हैं कि अलग अलग पदार्थ शरीर और दिमाग पर कैसे असर डालते हैं और उनके क्या खतरे हो सकते हैं।
इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि दवाओं जैसे जटिल और भावनात्मक मुद्दे पर भावनाओं या राजनीति से ऊपर उठकर विज्ञान और तर्क का सहारा लेना कितना जरूरी है।
बिल्कुल, आइवसन हमें यही दिखाते हैं, ठंडे दिमाग से तथ्यों को देखना।
और आपके लिए?
मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये जानना था कि हमारा शरीर खुद ही मॉर्फिन जैसे एंडोर्फिन्स और कैनबिस जैसे एंडोकैनबिनॉइड्स रसायन बनाता है।
हाँ, ये वाकई कमाल है।
मतलब इन बाहरी दवाओं के असर के लिए हमारे शरीर में पहले से ही सिस्टम मौजूद है, दवाएं बस उन सिस्टम्स को हाईजैक कर लेती हैं। ये जानना काफी हैरान करने वाला था। प्रकृति वाकई अद्भुत है।
बिल्कुल, और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में हम सभी दवाओं को, चाहे वो आज कानूनी हो या गैर कानूनी, सिर्फ और सिर्फ उनके वैज्ञानिक रूप से साबित नुकसान और जोखिम के आधार पर नियंत्रित करने का फैसला करें, तो हमारी नीतियां कैसी दिखेंगी? क्या आज की कुछ सबसे आम और कानूनी दवाएं जैसे शराब या तंबाकू सबसे ज्यादा नियंत्रित पदार्थों की लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे?
ये एक बड़ा सवाल है, सोचने लायक।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।